पृष्ठ संख्या 170, कैफी आजमी। जन्म 19 फरवरी 1919, मृत्यु 10 मई 2002 ईस्वी। की है कोई हसीना खता, हर खता के साथ थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सजा के साथ। अख्तर हुसैन रिजवी उर्फ कैफी आजमी का जन्म 19 फरवरी 1919 को आजमगढ़ जिले के मेजुआ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद फतेह हुसैन रिजवी था। घर में शेर व शायरी का अच्छा खासा माहौल था। उनके बड़े भाई और पिता भी शायरी से काफ़ी लगाव रखते थे। उनकी पत्नी का नाम शौकत कैफी था। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक सज्जाद जहीर के ड्राइविंग रूम में मुंबई में उनकी शादी हुई थी। उनकी जीवन साथी शौकत कैफी ने उन्हें इसलिए पसंद किया था कि वह बहुत बड़े शायर थे। शौकत जी ने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपने प्रगतिशील पिता के साथ औरंगाबाद से मुंबई आकर कैफी आजमी से शादी कर ली। कैफी आजमी बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। बचपन से ही वह सारी दुनिया की तकलीफ़ों को ख़त्म कर देने वाली जमात में शामिल हो गए थे। कैफी में जन्मजात काव्य प्रतिभा थी। एक मिसरे की पूर्ति के लिए उन्होंने 12 साल की उम्र में जो गज़ल कही वह अमर हो गई। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। उनके पिता ने उनको तुरंत एक पार कर पेन और एक शेरवानी देने के साथ उनका उपनाम कैफी रखा। तभी से वह कैफी आजमी हो गए। उनकी 3 प्रमुख कृतियां प्रकाशित हुई, आखिरी शब्द, झनकार और आज़ाद सजदे। उन्होंने तमाम फिल्मों में गीत लिखे जिनके लिए उन्हें नेशनल पुरस्कार के अलावा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस कलम के सिपाही ने 10 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैफी आजमी एक व्यक्ति ना होकर एक पूरा युग है। उनके कलाम जिंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ देते हैं। उनमें कहीं झूठ फरेब नहीं मिलता, इसलिए वह आज भी उतनी ही ज़्यादा असरदार हैं। मशहूर लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने कैफी आजमी को आज की उर्दू शायरी का बादशाह करार दिया है, और सचमुच वह हैं भी। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह आम आदमी की तकलीफ़ों को न सिर्फ बड़े प्रभाव शब्दों के सामने रखता है बल्कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत भी देता है। पृष्ठ संख्या 171। साथ ही उर्दू शायरी के प्रमुख विषय हुस्न और इश्क के लिए एक से बढ़कर एक नजराने भी पेश करता है। उन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत से गीत लिखे जो आम और ख़ास दोनों द्वारा बहुत पसंद किए गए। कैफी आदमी उस पीढ़ी की एक बड़ी जमात के लिए प्रेरणा स्रोत थे। सामंती मानसिकता से ग्रसित उस समाज में कैफी की प्रसिद्धि नज्म औरत बहुत प्रसिद्धि हुई। जब यह नज्म 40 के दशक में लिखी गई तो उस वक्त की क्रांतिकारी नज्मों में से एक थी। उस समय औरत को मर्द के बराबर दर्जा देना बहुत बड़ी बात थी। कैफी आजमी दोस्ती के मामले में बहुत ही खुशकिस्मत रहे। उन्हें हमेशा ही बेहतरीन दोस्त मिले। मुंबई में इप्टा के दिनों में उनके दोस्तों की फेहरिस्त में जो लोग थे वह बाद में बहुत बड़े नामी कलाकार के रूप में जाने गए। इप्टा में ही उन्होंने किशन चंदर, मंजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बलराज साहनी, मोहन सहगल, मुल्क राज आनंद, रोमेश थापर, शैलेंद्र, प्रेम धवन, इसमत चुगताई, एके हंगल, हेमंत कुमार, सलील चौधरी जैसे कम्युनिस्टों के साथ काम किया। 20वीं सदी की कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए कैफी साहब ने गीत लिखे। हीर रांझा में चेतन आनंद ने सारे संवाद कविता में पेश करना चाहा और कैफी ने उसे लिखा। कैफी ने अनेक फिल्मों में गीत लिखे जिनमें कागज़ के फूल, मंथन कोहरा, सात हिंदुस्तानी, बावर्ची, फाकीजा, हस्ते जग, अर्थ, राजिया सुल्तान आदि महत्वपूर्ण हैं। कैफी आजमी अपने समकालीनों में इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने शब्दों में जीवन व्यवहार से अर्थ भरा। वह जनता के हित में सिर्फ लिखते ही नहीं थे, अन्याय, अत्याचार व सांप्रदायिकता के विरुद्ध सिर्फ शायरी ही नहीं करते थे, सीधे सीधे जन आंदोलनों में भी शामिल होते थे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिकता एकता के लिए काशी से मगहर यात्रा में कैफी साहब अपनी पत्नी शौकत आजमी के साथ शामिल थे। इस यात्रा में संयोग से मैं भी था। मगहर में जब सभा चल रही थी, रात हो गई थी और अचानक तेज आंधी तूफान के कारण पंडाल गिर गया। सभी लोग भागकर बाहर आ गए, किंतु कैफी साहब उसी में रह गए थे, जिन्हें गाड़ियों की लाइट जलाकर मुश्किल से बाहर निकाला गया। उन दिनों वे अस्वस्थ भी थे। यह संस्कार उनके बच्चों में भी है।